الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ ہود کی 110ویں سے لے کر 113ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں حسین سبز علی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور نسندیہ ہم نے موسیٰ کو تورات پردان کی، کنتو اس میں مت بھید ہو گیا और यदि काफिरों को समय देने के संबंध में आपके पालनहार की परंपरा पहले से निर्धारित न होती तो निश्चित रूप से इसी संसार में उनके बीच फैसला कर दिया जाता, और निसंदेह वे लोग गहरे संदेह में पड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से आपका पालनहार उनके कर्मों का बदला उन्हें पूर्ण रूप से प्रदान करेगा, और निसंदेह वे जो कुछ करते हैं वो उससे पूर्णतः अवगत है। तो हे पैगंबर, जैसा कि आपको आदेश दिया गया है, आप और आपके साथ ईश्वर की ओर आने वाले लोग प्रतिरोध करें और उद्दंडता न करें कि निसंदेह जो कुछ तुम लोग करते हो ईश्वर उसे देखने वाला है, और अत्याचारियों पर भरोसा न करो कि नरक की आग तुम्हें अपनी चपेट में ले लेगी, और ये जान लो कि ईश्वर के अतिरिक्त तुम्हारा कोई सहायक नहीं है और किसी की ओर से तुम्हारी सहायता नहीं की जाएगी।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज रविवार है, सितंबर की 11, सफर की 14 और शहरी वर्मा की 26 तारीख। कार्यक्रम में आप पहले समाचार सुनेंगे, फिर राजनीतिक चर्चा पेश की जाएगी, जिसके उपरांत साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे, कुरान ईश्वरीय चमत्कार। हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा। कुछ ही क्षणों में विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। नासिर कनआनी कहा कि यूरोपीय टिकड़ी को तीसरे पक्ष के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अरविंद के मौके पर हमला करने का प्रयास करने वाले 11 दाइशी मार गिराए गए। पाकिस्तान में बाढ़ की तबाही को गुटेरेस ने अकल्पनीय बताया है। यूक्रेन की सेना की प्रगति के बाद रूसी सेना को अपने मजबूत गढ़ से पीछे हटना पड़ा है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान ने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 3 यूरोपीय देशों के हालिया गैर सार्थक बयान को खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि ये तिकड़ी अगर इसराइल के नेतृत्व का अनुसरण जारी रखती है तो उसे इसके परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि यह बहुत ही खेदजनक है, ये देश इस तरह के एक गैर विचारणीय बयान देकर ज़ायोनी शासन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं जो परमाणु वार्ता की विफलता के लिए पहले से ही प्रयासरत रहा है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि अगर वे इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें इसके परिणामों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहिए। गौरतलब है कि 3 यूरोपीय देशों फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने यह दावा किया है कि अब जबकि समझौते के बहुत करीब थे, ईरान ने गैर संबंधित मुद्दों को फिर से उठा दिया, जबकि ये मुद्दे NPT और IAEA से संबंधित हैं।
इराक में सदर धड़े के नेता और शिया धर्मगुरु मुक्तदा सदर ने ट्विटर पर एक पोस्ट में अरविंद के अवसर पर लोगों से करबला की ओर कूच करने का आह्वान करते हुए इमाम हुसैन के जायरीन से कुछ सिफारिशें की हैं। रविवार को अपने ट्वीट में सदर ने लोगों से कहा है कि वे किसी गुट या दल का झंडा हाथों में लेकर नहीं चलें और इसी तरह से कोई तस्वीर या प्लेकार्ड हाथों में नहीं उठाएं। عراقی شیعہ دھرم گرو نے بل دیا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کسی کی بھی تصویر نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ کسی شہید کی تصویر بھی نہیں، اسی طرح سے کفن یا کسی بھی طرح کا ایسا لباس نہیں پہنے جو انیہ زائرین سے الگ پہچان رکھتا ہو۔
اربعین کے افسر پر حملہ کرنے کی یوجنا بنا رہے داعش کے 11 آتنکوادی مار گرائے گئے۔ عراقی سینہ کی جوائنٹ آپریشن کمان نے شنیوار رات ایک بیان میں آتنکوادی گٹ داعش کے 11 آتنکوادیوں کو مارے جانے کی سوچنا دی ہے۔ سوتروں کا کہنا ہے کہ یہ مارے گئے آتنکوادی اربعین کے موقع پر کربلا اور آس پاس کے علاقوں میں آتنکوادی حملے کرنا چاہ رہے تھے۔ جوائنٹ آپریشن کمان کا کہنا ہے کہ یہ 11 آتنکوادی الانبار پرانت میں ایک وشیش آپریشن کے دوران مارے گئے۔ اس سے پہلے 2 ستمبر کو عراقی سوئم سیوی بل حشد الشعبی کے کمانڈر نے نینوا پرانت میں داعش کے ایک سرغنہ کو مار گرانے کی خبر دی تھی۔
کربلا جانے والے یاتریوں کی ایک بس میں وسفوٹ کے کارن کم سے کم 11 شردالو شہید ہو گئے، جبکہ 30 انیہ گھائل ہوئے جن میں ایرانی بھی شامل ہیں۔ ایران کی ریڈ کرسینٹ سوسائٹی کے پرمکھ نے بتایا کہ عراق کے بابل پرانت میں شملی نگر میں ایک پیٹرول پمپ کے نکٹ وسفوٹ ہوا۔ اس وسفوٹ میں کئی لوگ ہتاہت اور گھائل ہوئے۔ پیر حسین کلیوان نے بتایا کہ رویوار کو یہ گھٹنا گھٹی، جس کے بعد ریڈ کرسینٹ سوسائٹی کی ایمبولینس گھٹنا استھل پر پہنچ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ گھائلوں میں ایرانی شردھالو بھی شامل ہیں۔ ریڈ کرسینٹ کے پرمکھ کے انوسار مرتکوں کی ناگرکتا کی ابھی پہچان نہیں ہو سکی ہے، اور جیسے ہی یہ کام ہوگا تتکال اس کی گھوشنا کر لی جائے گی۔
پاکستان میں باڑھ سے ہونے والی تباہی پر راشٹر سنگھ کے پرمکھ نے اسے بہت ہی بھیاوہ بتایا ہے۔ اینٹونیو گوٹیرس نے پاکستان کے باڑھ گرست کھیتروں کا نریکشن کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جس استر کی مانویہ تباہی ہوئی ہے ویسی تباہی میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھی۔ انہوں نے کراچی میں ایک سنواددتا سمیلن میں کہا کہ اپنے جیون میں وشو کے بہت سے کھیتروں میں نے مانویہ سنکٹ اور پراکرتک آپداؤں کو نکٹ سے دیکھا ہے، کنتو جو تباہی یہاں پر دیکھی ہے ویسی تباہی کہیں نہیں دیکھی۔ راسنگ کے مہا سچیو کے انوسار جو کچھ میں نے پاکستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو بتانے کے لیے میرے پاس شبد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ باڑھ سے پاکستان کو اکلپنیے نقصان پہنچا ہے۔ گوٹیرس نے یہ بات سویکار کی ہے کہ سنیوکت راشٹر سنگھ پاکستان کے باڑھ پربھاویتوں کے لیے جو کچھ کر رہا ہے وہ آوشکتا کا ایک بہت چھوٹا سا بھاگ ہے۔ ہم اپنی سیمت شمتا اور سنسادھنوں سے پوری طرح سے اوگت ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتراشٹری سمودائے سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس سمے پاکستان کی سہایتا کے لیے آگے آئے۔ اسی کے ساتھ سنیوکت راشٹر سنگھ کے مہا سچیو نے وشو سے جلوایو پریورتن کی اور دھیان دیے جانے پر بھی بل دیا ہے۔
روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ رکشا منترالے نے سینکوں کو پورووتر یوکرین کے ایک مکھیہ شہر ایزیم کے پاس آس پاس کے کھیتروں سے پیچھے ہٹنے کا آدیش دیا ہے۔ یوکرینی سینا کی پرگتی کے بعد روسی سینا کو اتر پوری یوکرین میں اپنے مضبوط گڑھ سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ مارچ میں سینکوں کو راجدھانی کیف سے واپس بلانے کے بعد سے شنیوار کو خارکیو پرانت میں تیزی سے ایزیم کا پتن ماسکو کے لیے ابھی تک کا سب سے بڑا نقصان مانا جا رہا ہے۔ 6 مہینے سے جاری اس یدھ میں یہ گھٹنا ایک مہتوپورن موڑ ثابت ہو سکتی ہے، جس میں ہزاروں روسی سینکوں کو گولہ بارودی کے بھنڈار اور سینیہ اپکرن چھوڑ کر تیزی سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ روسی سینا ایزیم کو ڈونیسک اور لوہانسک سہیت ڈونباس چھیتر میں پچھلے 1 مہینے سے اپنے مکھیہ سینک ابھیانوں کے لیے رسد پہنچانے کے کیندر کے روپ میں استعمال کر رہی تھی۔ روس کی سرکاری نیوز ایجنسی تاس کی رپورٹ کے مطابق روس کے رکشا نے اپنے سینکوں کو ایزیم کے آس پاس کے چھیتروں سے پیچھے ہٹنے اور پڑوسی ڈونٹسک چھیتر میں اپنے ابھیان کو مضبوط کرنے کا آدیش دیا ہے۔
دکشن پشچمی ساگر کے دیش پاپوا نیوگنی میں رویوار کو بھیشن بھوکمپ آیا۔ اس بھوکمپ میں کئی لوگ ہتاہت اور گھائل ہوئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر بھوکمپ کی تیورتا 7.6 ماپی گئی۔ استھانی سمے کے مطابق رویوار صبح 5:51 پر بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تیور بھوکمپ سے پہلے کئی چھوٹے جھٹکے پہل آئے تھے۔ بھوکمپ میں اب تک مرنے والوں کی سنکھیا 5 ہے، جبکہ گھائلوں کی سنکھیا بھی اسپشٹ نہیں ہوئی ہے۔ पापुआ न्यूगिनी का सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र कायांतु है। यहीं पर भूकंप का केंद्र भी है। राजधानी से भूकंप का केंद्र लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। भूकंप के कारण सड़कों में दरारें पड़ गईं और कई घरों की छतें टूट गईं। इस भूकंप से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस क्षेत्र में अधिक तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं।
उत्तरी कोरिया के नेता द्वारा इस देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित करने से दक्षिणी कोरिया में चिंताएं बढ़ने लगी हैं। दक्षिणी कोरिया के डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस पर चिंता व्यक्त की है कि उत्तरी कोरिया अपनी रक्षा में परमाणु शस्त्रों को प्रयोग कर सकता है। इस पार्टी के नेता ने, जो वहां के विपक्षी नेता भी हैं, उत्तरी कोरिया के इस फैसले पर अचरज जताया है। ली जाए म्योंग ने कहा है कि इस फैसले से कोरिया प्रायद्वीप के हालात अधिक खराब होंगे। उत्तर कोरिया ने एक नया कानून पारित करके ऐलान किया है कि वो अब एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके आधार पर अब उत्तरी कोरिया को परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार उत्तरी कोरिया ने परमाणु हथियारों को लेकर चली आ रही अपनी नीति में ये बड़ा बदलाव किया है।
अमेरिका के अधिकांश लोग 2024 में ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखना चाहते। अमेरिका में करवाए गए ताज़ा सर्वेक्षणों के परिणाम ये बताते हैं कि 61% अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप को इस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। पीबीएस, एनपीआर और मैरिज संस्था द्वारा संयुक्त रूप में कराए गए सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार हर 10 अमरीकियों में से 6 अमरीकी इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वे आगामी राष्ट्रपति के रूप में देखें। जानकारों का कहना है कि ट्रंप अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं। अमरीका के केवल 28% लोग ही ट्रंप के आगामी राष्ट्रपति बनने का समर्थन करते हैं।
तुर्की के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे ने इस देश की सत्ताधारी पार्टी की संज्ञा डूबती हुई नाव से दी है। मोहम्मद अली फातेह अरबकन ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में अर्दोगान की गठबंधन सरकार के साथ सहयोग को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन डूबता हुआ जहाज है। फातेह अरबकन के अनुसार ऐसी नाव पर सवार होना मूर्खता है जो डूब रही हो। उन्होंने कहा कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये काम नहीं करेगा। तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री के सुपुत्र ने कहा कि पिछले 20 वर्षों के दौरान तुर्की की जस्टिस एवं डेवलपमेंट पार्टी ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कई ब्लंडर किए हैं। उनका कहना था कि इन्हीं गलतियों के कारण आज तुर्की की अर्थव्यवस्था के सामने कई प्रकार की समस्याएं हैं। तुर्की समय कठिन आर्थिक हालात से गुजर रहा है। इस देश की करेंसी लीरा इस समय अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में इस देश को गंभीर आर्थिक हालात का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच तुर्की की ALF सर्वेक्षण कंपनी की ओर से कराए जाने वाले सर्वेक्षण से पता चलता है कि तुर्की में होने वाले आगामी चुनाव में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के नेतृत्व वाली जस्टिस एवं डेवलपमेंट पार्टी के जीतने की संभावना न के बराबर है। इसी के साथ रेडियो तेरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिज़वी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं मुसलमानों की समस्याएं और विश्व अहले बैत परिषद की बैठक, ईरान का परमाणु मुद्दा और कश्मीर में गुलाम नबी आजाद की गतिविधियां। तो सबसे पहले विश्व अहले बैत परिषद की बैठक और मुसलमानों की समस्याओं का मुद्दा। दोस्तों, वैसे तो विश्व अहल बैत परिषद का सम्मेलन समाप्त हो चुका है, लेकिन इस दौरान विभिन्न देशों से आए धर्म गुरुओं, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से हमारे वरिष्ठ संवाददाता रविश जैदी ने बातचीत की, जो हम समय समय पर आपके समक्ष पेश करते रहते हैं। आज भी हम अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित बोत्सवाना गणराज्य से आए धर्म गुरु मौलाना रजा अब्बास नकवी के साथ हुई विशेष बातचीत को पेश कर रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं।
साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बोरसेना, जो साउथ अफ्रीका के पास एक देश है। वहाँ के इमाम जुमा हैं मौलाना रजा अब्बास नकवी, जो इस टाइम तेहरान आए हुए हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि ये जो विश्व अहले बैत परिषद की कॉन्फ्रेंस में आए हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका जो शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है हमको ये मौका दिया, और ये और बहरहाल खुशी है कि आपसे मुलाकात हुई। और यहाँ के ऊपर जो हम लोग आए हैं, हम के बोट्सवाना, मैं सैयद रजा अब्बास नकवी, बोट्सवाना जो साउथ अफ्रीका से मिला हुआ है, जेम्बिया, जिम्बावे और नमीबिया, इसके जो है और साउथ अफ्रीका इसका बॉर्डर्स है। तो वहाँ के ऊपर मैं जो है 18 साल से तकरीबन रह रहा हूँ, और ये तीसरी चौथी मरतबा है कि जो इस असम्बली में मैंने शिरकत की है। और यहाँ के ऊपर शिरकत करने का एक सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा ये महसूस होता है कि लोगों के व्यूज़, लोगों की फ़िक्रें, जो एक मुख्तलिफ फ़िक्रें होती है कि जिन लोगों ने काम किस तरीके से किया है, तो जो लोग उस फ़िक्र तक नहीं पहुँचे हैं, तो कम से कम जो है एक दूसरे की फ़िक्र जो है मददगार होती है काम करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जम्हूरी इस्लामी ईरान ने ये कॉन्फ्रेंस करके भी जो है बहुत कुछ हमको सिखाया और लोगों को सिखाया, और ईरान का असर अब बहुत पूरी दुनिया ही में फैल रहा है, खुसूसन जैसे साउथ अफ्रीका में जो है ईरान का असर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कंट्री बड़ी है और लोग जो वहाँ के ऊपर अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। खुद हमारे यहाँ भी जो है, मैं जैसा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अहले सुन्नत में से है, जब एक ईरानी डेलीगेट गया था तो हम जब उससे मिले तो वो यही कह रखता था कि प्रेस टीवी हमेशा हम देखते हैं, और जो है क्या कहते हैं कि ईरान की जो चीज़ें होते हैं हम उससे जो है सबक सीखते हैं, जबकि वो खुद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो है रिचेस्ट ऑफ कंट्री है, मतलब जो है वो है फर्स्ट टॉप 10 में, तो वो भी जो है क्या कहते हैं कि जमहूरी इस्लामी ईरान से जो है और उनके व्यू से इतना मुतासर है।
दूसरा सवाल ये है मेरा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के दरमियान, शियों के दरमियान मतभेद पैदा किया जा रहा है, उनको डिवाइड किया जा रहा है, जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ हैं खासकर अमरीका, इसराइल, इस तरह के तमाम योजनाएँ लाती हैं, तमाम इस तरह की स्कीमें लाती हैं ताकि मुसलमानों को एक दूसरे से अलग कर सके, उसमें कुछ हद तक वो कामयाब होते हैं कुछ अरब देशों की मदद से। इसमें ईरान मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए में और एक मंच पर लाने में ईरान ने जो मेहनत की है, आप उस देख बता सकते हैं किस हद तक कामयाबी मिली ईरान को?
देखिए, जमहूरी इस्लामी ईरान हमेशा ने एक शियत को एक प्लेटफॉर्म दिया है, और उसके बाद जो है अपने वीज़ और अपने नज़रिए को इस तरीके से पेश किया है कि जो शियत के ख़िलाफ़ तो आज से नहीं है या इनकलाब के बाद से नहीं है, पहले से भी जो है प्रोपेगंडे हुए थे, प्रोपेगंडे हो रहे थे, लेकिन जो है उसका कोई शको शुभा था, उसकी बातें उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से जो है जमहूरी इस्लामी ईरान जो है इनकलाब आया, और इनकलाब की बरकत से वो तमाम शुभात भी जा रहे हैं, क्योंकि जो है बहुत सी तकारीब जो है इस जैसे ईरान में होती है, तकारीब बैनुल मिलल मज़ाहिब कि जो है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ जो है कि यहाँ के ऊपर जो है बैठना, या उनके जो है मुबल्लिगीन हम लोग हैं वहाँ के ऊपर जाते हैं, हमसे भी बहुत से शियों के ख़िलाफ़ और शियों के बारे में जो उनके मुगल्लज़ात जो बयान किए हैं उनके मुफ्तियों और मौलवियों ने, वो बयान करते हैं, जब उनको हकीकत पता चलती है तब वो जो है क्या कहते हैं कि ख़ुद जो है कहने वालों को बुरा कहते हैं।
अब रुख करते हैं ईरान के परमाणु वार्ता के मुद्दे की ओर।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
ایران پر لگے پرتیبندھوں کو ہٹانے کے لیے جو پرمانو وارتا ہو رہی تھی، اس کے بارے میں اب نئی نئی اٹکلیں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ ٹیکہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس پرمانو وارتا کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک سمیکشا پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی سید میسم۔
ایران نے پرمانو وارتا کو لے کر یوروپی تگڑی کے حالیہ بیان کو سد بھاونا کے خلاف بتاتے ہوئے برٹین، فرانس اور جرمنی کو چیتاونی دی ہے کہ پرمانو سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے بچے کچھ مدوں کے سمادھان کے مارگ میں رکاوٹیں اور اڑچنیں ڈالنے سے بچیں، ورنہ پھر اس کے پریڑام بھگتنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ شنیوار کی رات ایران کے ودیش منترالے نے 2015 میں ہوئے پرمانو سمجھوتے پر ہستاکشر کرنے والے ان تین یورپی دیشوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا، بہت ہی کھید جنک بات ہے کہ جو وارتا کے دونوں پکشوں کے بیچ انتم بچے کچھ مدوں کے سمادھان کے لیے بات چیت جاری ہے، اس طرح کے بیان جاری کیے جا رہے ہیں جو وارتا کو پٹری سے اتار سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے اس طرح کے ادوردرشی بیانوں سے تینوں یورپی دیش زائونی شاسن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جو کسی بھی قیمت پر پرمانو سمجھوتے کو روکنا چاہتا ہے۔ فرانس، برٹین اور جرمنی نے اپنے ایک سنیکت بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ سمجھوتے کے بہت نکٹ پہنچنے کے بعد ایران نے غیر سمبندھت مدوں کو پھر سے اٹھایا ہے، جبکہ ان مدوں کا اس پرمانو سمجھوتے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ مدے این پی ٹی اور آئی اے ای سے سمبندھت ہیں۔ اس بیان کے انت میں ایران پر آروپ مڑتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران پرمانو سمجھوتے کی ناکامی کے لیے ذمہ دار ہے، اور ہم ایران کے اس رویے کے بارے میں آئی اے ای کے ساتھ وچار ومرش کریں گے۔ حالانکہ ایران نے امریکہ کے پرستاووں کا جواب دے دیا ہے، جسے یورپی سنگھ کے ودیش معاملوں کے پرمکھ نے سارتھک اور تارکی قرار دیا تھا۔ اس پرکار گیند اب امریکہ کے پالے میں ہے، جسے ایران کے پرستاووں کا جواب دینا ہے۔ اس لیے ایسے چرن میں تہران پر دباؤ بنانے اور بائیڈن پرشاسن کے سمرتھن سے پرمانو سمجھوتے تک پہنچنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اس سندرب میں ایران کی پرمانو وارتاکار ٹیم کے صلاحکار محمد مرندی کا کہنا ہے کہ ایران نے پرمانو سمجھوتے کا الگھن نہیں کیا ہے اور اس سے باہر نہیں نکلا ہے، بلکہ یہ تین یورپی دیش ہیں جو وائٹ ہاؤس کی پیروی کر رہے ہیں جس نے اس سمجھوتے کا الگھن کیا تھا۔ یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ یورپی دیشوں کے اس بیان کے ترنت بعد ہی واشنگٹن نے اس کے سمرتھن کا اعلان کر دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیان امریکہ کی پورو سہمتی سے ہی دیا گیا تھا، جبکہ روس نے یورپی دیشوں کے اس بیان کی آلوچنا کی ہے اور کہا ہے کہ ورتمان پرستھیوں میں یہ بیان کسی بھی طرح سے پرمانو وارتا کو پریڑام تک پہنچانے میں مدد نہیں کرے گا۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت نینترت کشمیر میں کانگریس کے ورشٹھ نیتا غلام نبی آزاد کی راجنیتک گتیویدھیاں شروع ہو گئی ہیں، جبکہ کشمیر کے مین اسٹریم دلوں نے کیندر سرکار سے اپیل کی ہے۔ وسترت رپورٹ کے ساتھ شری نگر سے ہمارے ساتھی سپتے محمد حسن۔
جموں میں ایک بار پھر مین اسٹریم دلوں کی ایک بیٹھک ہوئی، جس میں نئی دہلی سے کہا گیا ہے کہ وہ کشمیر میں باہر کے راجیوں کو ووٹ کا حق نہ دیں۔ جموں میں بھوتپورو مکھیہ منتری ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی ادھیکشتا میں یہ بیٹھک ہوئی، جس میں شرومنی اکالی دل، شیو سینا، کانگریس اور کئی ایسے نیتاؤں نے بھاگ لیا جو پہلے دھارا 370 اور 35A کے سماپت کے وقت اس کا سواگت کر رہے تھے، پرنتو آج ان کا سر بدلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس اوسر پر کہا کہ وہ نئی دہلی کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز کرنا چاہیے رہے جسے لوگوں کا سمرتھن حاصل ہو۔ اس بیچ جموں میں غلام نبی آزاد بھی سکریا ہو گیا ہے اور وہ پچھلے کئی دوس سے جن سبھائیں آیوجت کر رہے ہیں۔ غلام نبی آزاد، بھاجپا اور آپ جیسے دلوں نے اس بیٹھک میں بھاگ نہیں لیا۔ غلام نبی آزاد نے ایک بار پھر نئی دہلی سے کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں ودھان سبھا کے چناؤ کرائیں اور راج کا درجہ واپس کریں۔ انہوں نے جن سبھا کو سمبوجت کرتے ہوئے کہا،
لیکن ہم غریب لوگ اس ریاست کے، جہاں 90% غریبی ہے، بیکاری ہے، جہالت ہے، بے روزگاری ہے، ہم ناروں کے زندہ، ناروں کے نام پہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں روٹی چاہیے، ہمارے مزدوروں کو ہاتھ میں کام چاہیے، بیلچہ چاہیے، گنتی چاہیے، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو دفتر میں کرسی چاہیے، وہ کلرک رہنا چاہیے، پٹواری بننا چاہیں گے، ٹیچر بننا چاہیں گے، ڈاکٹر بننا چاہیں گے، انجینئر بننا چاہیں گے۔
اس بیچ کانگریس نے آروپ لگایا ہے کہ غلام نبی آزاد نئی دہلی کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ بھوتپور ادھیکش کانگریس غلام احمد میر نے اس سمے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا،
اگر وہ پدم بھوشن کے ٹائم پر مودی کو کہہ دیتا کہ سب سے بڑا پدم بھوشن میرے لیے یہ ہے کہ آپ میری ریاست واپس دو، جموں کشمیر کی ریاست جو آپ نے توڑ پھوڑ کر دی، جو آپ نے تحفظ لیا، وہ واپس کرو، وہ میرے لیے سب سے بڑا پدم بھوشن۔
اس بیچ جموں کشمیر میں ہنسک گھٹناؤں کا کرم بھی جاری ہے، جس میں ایک ویکتی کے ہتاہت ہونے کی سوچنا ہے۔ اس ہتیا کے پیچھے پولیس کا کہنا ہے کہ الگاوادی چھاپہ مار ہے، پرنتو ابھی تک کسی بھی سنگھٹن نے اس کی ذمہ داری سویکار نہیں کی ہے۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا یہ کارکرم یہیں پر سماپت ہوا۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستوں، راجنیتک چرچا کے بعد پیش ہے کارکرم قرآن ایشوری چمتکار۔
قرآن ایشوریہ چمتکار۔
پری شروتاؤں، کارکرم قرآن ایشوریہ چمتکار کی ایک انی کڑی لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں، آشا ہے پسند کریں گے۔ آئیے پہلے سورہ طٰہٰ کی 131 آیت کی تلاوت سنیں۔
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔
اور ہے پیغمبر، جو کچھ ہم نے لوگوں کے کچھ گٹوں کو بھوتک انوکمپائیں دے رکھی ہیں، ان کو آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے کہ یہ سانسارک جیون کی انوپیوگی کلیاں ہیں، جن کے مادھیم سے ہم ان کی پریکشا لیں گے۔ اور جان لیجئے کہ آپ کے پالنہار کی روزی اتم بھی ہے اور استھائی بھی۔
اس سے پہلے کی آیتوں میں ایشور نے اپنے پیغمبر کو ویرودھیوں کے انوچت ویوہار و باتوں پر سنیم سے کام لینے کی سفارش کی تھی۔ یہ آیت پیغمبر کو سمبودھت کرتی ہے، کنتو اس کا سمبودھن سبھی مسلمانوں سے ہے۔ آیت کہتی ہے کہ سچیت رہو کہ کافروں کی دھن سمپتی، جو سانسارک ایوم بھوتک انوکمپا ہے، تمہیں موہت نہ کرے اور اس بات کا کارن نہ بنے کہ تم ایشور دوارا پردان کی گئی ایمان کی مہان انوکمپا کو تچھ سمجھنے لگو۔
اس کے اترکت جو کچھ ہم نے کافروں کو پردان کیا ہے وہ استھائی نہیں ہے اور بسنت کی کلیوں کی بھانتی بہت جلد مرجھانے و سماپت ہونے والا ہے۔ اس سے بھی مہتوپورن بات یہ ہے کہ یہ ساری وستویں پریکشا کا سادھن ہے اور انہیں ان انوکمپاؤں کا حساب دینا ہوگا۔
ईसाई से हमने सीखा कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से भौतिकता की ओर रुझान रखता है, किंतु उसे अपनी अन्य सभी इच्छाओं की भांति अपने इस रुझान को भी नियंत्रित करना चाहिए और संसार की चकाचौंध पर मोहित नहीं होना चाहिए।
हमें उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे पास हैं, उन चीजों को नहीं देखना चाहिए जो अन्य लोगों के पास हैं।
संसार की सभी अनुकंपाएं मनुष्य की परीक्षा के साधन हैं। जिसे अधिक अनुकंपाएं प्राप्त होंगी उसे परीक्षा भी अधिक देनी होगी।
आइए अब सूरह ताहा की 132वीं आयत की तिलावत सुने।
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى।
और हे पैगंबर, अपने परिजनों को नमाज का आदेश दीजिए और स्वयं भी उस पर जमे रहिए। हम आप सहित किसी से कोई रोजी नहीं मांगते, बल्कि हम ही तो हैं जो आप सहित सभी को रोजी देते हैं, और अच्छा अंत तो ईश्वर से भय रखने वालों ही के लिए निश्चित है।
पिछली आयत का क्रम जारी रखते हुए ये आयत इस संसार की तुच्छ व अस्थाई धन संपत्ति व अनुकंपाओं पर मोहित न होने और प्रलय की स्थाई व अमर अनुकंपाओं को दृष्टिगत रखने के संबंध में पुनः पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधित करते हुए कहती है कि आप स्वयं भी निरंतर नमाज पढ़ें और अपने परिजनों को भी सदैव नमाज पढ़ने की सिफारिश करें। निश्चित रूप से ईमान वाले लोगों को भी अपने पैगंबर का अनुसरण करते हुए ऐसा ही करना चाहिए तथा अपनी और अपने परिजनों की नमाज पर ध्यान देना चाहिए।
आगे चलकर आयत एक प्रश्न का उत्तर देती है। कुछ युवा पूछते हैं कि ईश्वर को हमारी नमाज की क्या आवश्यकता है कि उसने हमें नमाज पढ़ने का आदेश दिया है। ईश्वर कहता है कि मुझे तुम्हारी नमाज की क्या, स्वयं तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है। यदि मैं तुम्हें नमाज का आदेश देता हूँ तो उसका कारण यह है कि तुम संसार पर मोहित न हो और दिन में कई बार प्रलय को याद करो, प्रलय के अपने स्थायी जीवन को याद रखो और उस संसार के लिए प्रयास करते रहो।
इस आयत से हमने सीखा कि पुरुष अपने परिवार व संतान के धार्मिक प्रशिक्षण के संबंध में उत्तरदायी है और केवल उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त नहीं है।
बच्चे के प्रशिक्षण का सबसे पहला चरण पाठशाला नहीं अपितु परिवार है।
ईश्वर को हमारी उपासनाओं से कोई लाभ नहीं पहुंचता, बल्कि इन उपासनाओं के परिणाम स्वयं हमें प्राप्त होते हैं।
आइए अब सूरह ताहा की 133वीं आयत की तिलावत सुने।
وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى।
और उन्होंने कहा कि पैगंबर अपने पालनहार की ओर से हमारे पास कोई निशानी या चमत्कार क्यों नहीं लाते, क्या उनके पास पिछली आसमानी पुस्तकों में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करने वाला कुरान नहीं आया है।
मक्के के अनेकेश्वरवादी कुरान मजीद को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमत्कार के रूप में स्वीकार नहीं करते थे और बहाने बनाते हुए उनसे कहते थे कि वे पिछले पैगंबरों की भांति चमत्कार क्यों नहीं प्रस्तुत करते, जबकि विरोधियों ने उन चमत्कारों को भी स्वीकार नहीं किया था और वे हजरत ईसा व हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबरों पर भी ईमान नहीं लाए थे।
अनेकेश्वरवादियों को अपेक्षा थी कि जो कुछ वे प्रस्ताव देते हैं उन्हें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वीकार कर लें, جبکہ کوئی بھی پیغمبر لوگوں کی مانگ پر نہیں بلکہ ایشور کی اچھا پر چمتکار پرستوت کرتا ہے، اور یدی لوگوں کی مانگ پر ہی چمتکار پرستوت کیے جانے لگیں تو ہر ویکتی اپنے ایمان لانے کے لیے وبھن پرکار کی وچتر شرطیں رکھنے لگے گا، جس سے ساماجک معاملے بگڑنے لگیں گے۔
ایشور ان کے اتر میں کہتا ہے کہ یہ لوگ چمتکار کی مانگ کیوں کرتے ہیں اور بہانے کیوں بناتے ہیں؟ کیا یہ قرآن ان کے لیے پریاپت نہیں ہے جو اتنی وششتتاؤں کا سوامی ہے اور پچھلی آسمانی کتابوں میں جو باتیں ورنت ہیں ان کا الیکھ کرتا ہے؟
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ ہٹ دھرمی و گھمنڈی لوگ موجود اسپشٹ ترکوں کو سویکار نہیں کرتے اور انیہ ترکوں کی مانگ کرتے ہیں۔
वस्तुतः चमत्कार का स्वरूप महत्वपूर्ण नहीं है। जब मनुष्य में सत्य को स्वीकार करने की भावना ही न हो तो वो न तो कुरान मजीद को स्वीकार करता है न ही हजरत मूसा की लाठी को।
आइए अब सूरह ताहा की 134वीं और 135वीं आयतों की तिलावत सुने।
لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى۔
اور یدی ہم پیغمبر اور قرآن کے آنے سے پہلے انہیں کسی دنڈ سے ونشٹ کر دیتے تو وہ کہتے کہ ہے ہمارے پالنہار، تو نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ اس سے پہلے کہ ہم اپمانت اور لجت ہوتے ہم تیری آیتوں کا پالن کرنے لگتے۔ ہے پیغمبر کہہ دیجئے کہ ہر ایک پرتیکشا میں ہے، تو اب تم بھی پرتیکشا کرو، شیگر ہی تم جان لوگے کہ کون لوگ سیدھے مارگ والے ہیں اور کن لوگوں کو مارگ درشن پراپت ہے۔
یہ آیتیں مکے کے انیکیشور وادیوں کے ایک انیہ بہانے کا الیکھ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یدی ایشور کافروں کو ان کے کرموں کے کارن اسی سنسار میں دنڈت کر کے مار دے تو وہ یہ بہانہ پرستت کریں گے کہ تو نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا، شاید ہم اس کے مارگ درشن کو سویکار کر لیتے اور تیری آیتوں کا پالن کرنے لگتے۔ ایشور جانتا ہے کہ ان کا ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ کیول بہانے بازی کر رہے ہیں، اتہ جب اس نے قرآن مجید کے ساتھ پیغمبر کو ان کے پاس بھیجا تو وہ پرتی دن ایک نئی بات کرنے لگے اور ستیہ کو سویکار کرنے سے بچنے کے لیے نئے نئے بہانے بنانے لگے۔
اس کے بعد ایشور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ وہ ان ہٹ دھرمی و بہانے باز انیک ایشور وادیوں سے کہہ دیں کہ تم بھی اور ہم بھی سبھی پرتیکشا کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کی پرتیکشا ہے کہ ایشور نے کفر پر ستیہ دھرم کی وجے کا جو ہمیں وچن دیا ہے وہ کب پورا ہوتا ہے، اور تمہیں اس بات کی پرتیکشا ہے کہ ہم پر کب کٹھنائیاں و سمسیائیں آ پڑتی ہیں۔ آگے چل کر آیتیں کہتی ہیں کہ تم لوگ شیگر ہی سمجھ جاؤ گے کہ تم میں سے کون صحیح مارگ پر رہا ہے اور منشیہ کو گنتویہ تک پہنچانے والے سیدھے راستے پر چلا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی بھوشیہ وانیوں میں سے ایک ہے جس میں انیک ایشور وادیوں پر مسلمانوں کی وجے کی سوچنا دی گئی ہے، جبکہ اس سمے پیغمبر اسلام اور مسلمان شترو کی اور سے اتیانت کڑے دباؤ میں تھے۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ پیغمبروں کے بھیجے جانے کے بعد لوگوں کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں بچا ہے اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ایشوریہ دھرم کے بارے میں کوئی گیان نہیں تھا اور ہم انبھگیہ تھے۔ اس کے اترکت جب تک کوئی قانون لوگوں تک نہ پہنچا دیا جائے تب تک دنڈ اور جرمانہ نیائے سنگت نہیں ہوگا۔
اسلام سنتولن اور مدھیہ مارگ کا دھرم ہے اور سیدھے راستے کی اور مسلمانوں کا مارگ درشن کرتا ہے۔
دوستوں، پوتر قرآن کی آیتوں کی ویاخیا پر آدھارت کارکرم قرآن ایشوریہ چمتکار آپ نے سنا، اور اب سبھا کے انت میں پیش ہے انتم کارکرم آج کل۔
آج کل
दोस्तों कार्यक्रम आजकल के साथ हाजिर हैं स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम जायोनी जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की भूख हड़ताल, विशेषकर खलील अल अवादा की भूख हड़ताल और उनके प्रतिरोध के बारे में चर्चा करेंगे।
दोस्तों जायोनी जेल में बंद भूख हड़ताल पर बैठे फिलिस्तीनी कैदी खलील अल अवादा की शारीरिक स्थिति ने पूरे विश्व के सामने इस अवैध शासन की वास्तविकता सामने लाकर रख दी है। 172 दिनों की भूख हड़ताल के बाद फिलिस्तीनी बंदी खलील अल अवादा की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई है। जायोनी शासन के आदेश के अनुसार शारीरिक स्थिति ठीक होने तक वे इसराइली अस्पताल आसाफ हरूफिये में भर्ती रहेंगे। अब लगता है कि सन 1948 में फिलिस्तीन के अतिग्रहण के बाद बंदी बनाया जाना फिलिस्तीनियों का भाग्य बनकर रह गया है।
जब से फिलिस्तीनियों की भूमि का अतिग्रहण किया गया है तब से वे तीन प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, या उनकी हत्या कर दी जाती है, या उनको बंदी बना लिया जाता है, या फिर फिलिस्तीनियों को अपने मातृभूमि से पलायन करना पड़ता है। खलील अल अवादा उन अभागे फिलिस्तीनियों में से हैं जिनके भाग्य में शायद कारावास ही लिखा है। खलील अल अवादा का जन्म सन 1982 में पश्चिमी अल खलील में हुआ था। वे जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट के अजना नामक गांव में जन्मे थे। अल अवादा विवाहित हैं, उनकी चार बेटियां हैं।
अपनी आरंभिक शिक्षा उन्होंने अपने ही गांव से आरंभ की थी। आगे की पढ़ाई के लिए वे फिलिस्तीन के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने गए, किंतु इसराइल ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया। सन 2002 में उनको बिना किसी आरोप के गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद उनको 5.5 वर्षों की सजा सुनाई गई थी। अल अवादा ने अपने जीवन के 12 वर्ष जायोनी जेलों में गुजारे हैं। केवल अल अवादा ही नहीं बल्कि 500 फिलिस्तीनी इस समय बिना किसी आरोप के इसराइल की जेलों में बंद हैं। इसराइलियों द्वारा अकारण फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में पिछले 229 दिनों से वे हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि फिलिस्तीनी बंदियों को कभी उनका आरोप नहीं बताया जाता और जेलों में ठूंस दिया जाता है।
अवैध जायोनी शासन के अत्याचारों के मुकाबले में जहां पर फिलिस्तीनी बंदी अब प्रतिरोध के प्रतीक में परिवर्तित हो चुके हैं, वहीं पर फिलिस्तीनियों के विरुद्ध जायोनियों के अत्याचारों तथा उन पर उनके पश्चिमी समर्थकों के ध्यान न देने से इस अवैध शासन के भीतर दुस्साहस आ गया है। फिलिस्तीनी बंदी खलील अल अवादा की जो शारीरिक स्थिति है, वैसी स्थिति अगर किसी पश्चिमी देश में किसी यहूदी या ईसाई की होती तो निश्चित रूप से वह दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन जाती। फिलिस्तीनी बंदियों ने अपने विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचारों को विश्व को बताने के लिए भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया है।
172 दिनों की भूख हड़ताल के बाद फिलिस्तीनी बंदी अल अवादा की जो शारीरिक स्थिति हो गई है, उसके चित्रों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उनके चित्रों को देखकर बहुत से लोग जायोनी शासन की आलोचना करने लगे हैं। खलील अल अवादा की पत्नी कहती हैं कि जब मैंने उनकी तस्वीर देखी तो अचंभित रह गई, मैं उनको पहचान नहीं पाई। मेरे सामने जो फोटो था वो हड्डियों का एक ढांचा था। उस चित्र को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो मनुष्य के ढांचे पर किसी ने खाल चढ़ा दी हो। उनकी आंखें अंदर की ओर धंस चुकी थीं। उनके पेट की जगह पर एक गहरा गड्ढा सा था जिस्म पर गोश नाम की कोई चीज नहीं थी, केवल हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही थीं। कमजोरी के कारण खलील की स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी है।
विशेष बात यह है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में यूरोपीय संघ के कार्यालय की ओर से यह ऐलान किया गया है कि अल अवादा का चित्र देखकर हम स्तब्ध रह गए हैं। हालांकि यूरोपीय संघ का यह कार्यालय सामान्यतः ज़ायोनी शासन की फिलिस्तीन विरोधी कार्रवाइयों को अनदेखा कर देता है, लेकिन इस बार उसने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। खलील अल अवादा ने लंबे समय तक भूख हड़ताल करके ज़ायोनियों के विरुद्ध कड़े प्रतिरोध का प्रदर्शन किया है। फिलिस्तीन के प्रतिरोधकर्ता गुटों ने 1,000 फिलिस्तीनी बंदियों की भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए घोषणा की है कि खलील अल अवादा सहित सारे फिलिस्तीनी बंदियों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों के बंद किए जाने की मांग की है।
इन फिलिस्तीनी गुटों ने आम फिलिस्तीनियों और बंदी फिलिस्तीनियों दोनों के विरुद्ध अवैध ज़ायोनी शासन के अत्याचारों को बंद कराए जाने की मांग की है। फिलिस्तीन के प्रतिरोधकर्ता गुटों की ओर से जारी किए गए बयान में ये कहा गया है कि ये कोई पहला अवसर नहीं है कि जब हमारे बंदी अपने वैध अधिकारों को मनवाने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इसी बीच ज़ायोनी शासन के संचार माध्यमों ने इस बात की संभावना व्यक्त की है कि फिलिस्तीनी बंदियों की ओर से जेल में इंतफाजा किया जा सकता है और उसी दौरान अन्य क्षेत्रों में रहने वाले फिलिस्तीनी भी जन आंदोलन कर सकते हैं। इसी संदर्भ में इसराइल के चैनल 7 ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि इसराइल की सुरक्षा एजेंसियां फिलिस्तीनी बंदियों के इंतफाजा और उसी के साथ पश्चिमी तट के फिलिस्तीनियों की ओर से किसी भी प्रकार के जलांदोलन को लेकर बहुत चिंतित हैं।
चैनल 7 की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलिस्तीनी बंदियों के संदर्भ में जेलों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वाह न करने के विरोध में 1,000 फिलिस्तीनी बंदियों ने जेलों में भूख हड़ताल कर रखी है। इसराइल के चैनल 7 ने इसको जेलों के भीतर आंदोलन की संज्ञा दी है। फिलिस्तीनी बंदी खलील अल अवादा ने इसराइल की जेलों के भीतर अपना विरोध प्रकट करने के लिए भूख हड़ताल को ही माध्यम बनाते हुए अपनी बात रखने का प्रयास, जिसके परिणाम स्वरूप उनको अभी केवल आजादी का आदेश मिला है। हालांकि इससे इसराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है।
वे कोई पहले फिलिस्तीनी नहीं है जिसने अपनी मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल का सहारा लिया हो। इसी प्रकार से वो कोई अंतिम फिलिस्तीनी भी नहीं होंगे जिसने ये काम किया है। हालांकि इसराइल ने फिलिस्तीनियों को बंदी बनाकर उन पर तरह तरह से अत्याचार किए, लेकिन वे उनसे स्वतंत्रता की मांग को छीन नहीं पाए। फिलिस्तीनियों के भीतर अब भी स्वतंत्रता की आत्मा जीवित है। आज़ादी की मांग करने वाले फिलिस्तीनी ज़ायोनी जेलों में इसराइल के लिए एक जटिल समस्या के रूप में हो गए हैं। आज की दुनिया में जब संचार माध्यमों और सोशल मीडिया का दौर दौरा है, ऐसे में किसी भी चीज़ को छिपाए रखना लगभग असंभव हो चुका है।
ज़ायोनी शासन फिलिस्तीनियों का इतना बड़ा दुश्मन है कि अगर उसको इन चीजों का डर नहीं होता तो वह निसंकोच बंदी फिलिस्तीनियों की हत्याएं कर देता। इसीलिए कहा जाता है कि इसराइल की जेलों के भीतर फिलिस्तीनी बंदियों की हत्याएं कोई निराधार बात नहीं है। इस बात को कई इसराइली पत्रकार तक कह चुके हैं। इसराइल के चैनल 14 के पत्रकार हेलेल बीटन रोसन ने ट्वीट किया है कि वर्तमान समय में इसराइल की जेलों में 336 फिलिस्तीनी कैदी हैं और उनका कहना है कि इनमें से अधिकांश पिछले 20 वर्षों से जेल में बंद हैं और उनमें से 8 ऐसे फिलिस्तीनी बंदी हैं जो 25 वर्षों से जेल में बंद पड़े हैं।
इसराइल के इस दुस्साहसी और बेशर्म पत्रकार का ये कहना है कि इतने वर्षों तक इनकी देखभाल पर इतना अधिक पैसा खर्च करने से तो बेहतर ये है कि इन सबकी हत्या कर दी जाए। इस प्रकार के शर्मनाक बयान फिलिस्तीनियों के विरुद्ध ज़ायोनियों के द्वेष और उनकी जातिवादी विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं। पश्चिमी जिस इसराइल को अपने दृष्टिगत लोकतंत्र का उदाहरण मानते हैं, उस तथा कथित लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्दोषों को अकारण मार डालने की मांग की जाती है। हो सकता है कि लोक लज्जा के डर से ज़ायोनी शासन फिलिस्तीनी बंदियों की खुले आम हत्या करने में हिचकिचाहट महसूस करे, किंतु उन्होंने अपनी अमानवीय कार्रवाइयों से फिलिस्तीनी बंदियों को मौत के बहुत ही निकट पहुंचा दिया है।
अभी हाल ही में यह खबर आई है कि उचित समय पर उपचार न होने तथा सही देखभाल न किए जाने के कारण एक फिलिस्तीनी बंदी जेल में शहीद हो गया। 40 वर्षीय मूसा हारून अबू महमीद समय पर इलाज न होने के कारण इसराइल की जेल में शहीद हो गए। अबू महमीद की शहादत से अधिक दुखदायी उनकी गिरफ्तारी है। केवल पहचान पत्र न होने के कारण उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जहां पर समय पर उपचार न होने की वजह से वे शहीद हो गए। फिलिस्तीनियों ने सफलता के मंत्र को समझ लिया है। उनका मानना है कि प्रतिरोध ही वह मंत्र है जिससे अवैध ज़ायोनी शासन को परास्त किया जा सकता है। खलील अवादा ने 172 दिन की भूख हड़ताल करके ये सिद्ध कर दिया कि ज़ायोनी अत्याचारों के मुकाबले में प्रतिरोध ही सबसे अच्छा हथियार है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अनुमति चाहते हैं।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, सभा के समापन से पूर्व मुख्य समाचार एक बार फिर। नासिर कनानी ने कहा है कि यूरोपीय तिकड़ी को तीसरे पक्ष के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अरबईन के मौके पर हमला करने का प्रयास करने वाले 11 दाइशी मारे गए। पाकिस्तान में बाढ़ की तबाही को गुटेरेस ने अकल्पनीय बताया है। यूक्रेन की सेना की प्रगति के बाद रूसी सेना को अपने मजबूत गढ़ से पीछे हटना पड़ा है। दोस्तों, हमारा कार्यक्रम आपको आज का कैसा लगा, इस बारे में हमें अपने विचार जरूर लिख भेजिएगा। तो इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज।